संख्या 98, परिहास और व्यंग्य, सरोज स्मृति, गहरे व्यक्तिगत शोक की कविता होते हुए भी सामाजिक सरोकारों से सशक्त रूप से जुड़ी रही है। उसकी यही विशेषता उसे शोक गीतियों में विशिष्ट बनाती है। यह सच है कि कविता किसी बड़ी घटना, व्यक्तिगत या सामाजिक के घटित होते समय नहीं लिखी जाती, वह बाद में लिखी जाती है जब समूची घटना कवि के भीतर अनुभव के रूप में संचित हो जाती है। किंतु पुत्री के निधन का प्रकरण तो इतना व्यक्तिगत है कि उसका जब भी स्मरण किया जाएगा, सामान्य व्यक्ति या सामान्य रचनाकार सामान्य स्थिति में शोक की परिधि से बाहर आने की स्थिति में स्वयं को नहीं पाएगा। निराला का निरालापन यही देखने को मिलता है। अपनी पुत्री की मरणोत्तर स्मृति से संबंधित कविता में वह आदि से अंत तक व्यंग्य विनोद के मूड में रहते हैं। आरंभ और अंत की चंद पंक्तियों को छोड़कर ऐसा रचनात्मक संयम बहुत कम देखने को मिलेगा। शोकात्मक प्रकरण में विनोद वृत्ति का पाया जाना एक विरोधात्मक या विरोधाभासी स्थिति है, किंतु सरोज स्मृति में उसे अत्यंत सहज अभिव्यक्ति मिली है। इसका आधारभूत कारण यह है कि निराला ने सरोज के जीवन क्रम को अपने जीवन क्रम के समानांतर रखा है। यह निराला के वस्त्र विन्यास का कौशल है जिस पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। विशुद्ध परिहास या विनोद ह्यूमर की स्थिति वहाँ होती है जहाँ रचनाकार किसी अप्रासंगिकता को हल्के फुल्के ढंग से इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वह विनोद का विषय बन जाए। जाहिर है कि जहाँ लक्ष्य अप्रासंगिक विषय वस्तु की निरर्थकता को उजागर करना होता है, किंतु वही शैली परिहासात्मक होती है। सरोज स्मृति का एक प्रसंग लें। निराला की पत्नी का देहावसान। सरोज स्मृति कविता लिखने से प्रायः 17-18 वर्ष पूर्व हो चुका था। कविता लिखते समय निराला उस समय की घटना का संदर्भण करते हैं जब सरोज लगभग 4 वर्ष की थी और नानी नाना के यहाँ पल रही थी। निराला की कुंडली में दो विवाह लिखे हुए थे। निराला की विनोद वृत्ति इस संकल्प के साथ आरंभ होती है कि उन्हें दूसरा विवाह नहीं करना है। डॉट 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 मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रति अशंक। निराला उन रूढ़ियों के अंत तक विरोधी रहे जिनकी सामाजिक प्रगति की दृष्टि से विरोधात्मक पृष्ठ संख्या 99 भूमिका थी और जिनकी किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण संगति नहीं थी। कुंडली के लेख पर विश्वास करना ऐसी ही रूढ़ियों में शामिल था। अस्तु निराला दूसरे विवाह के प्रकरण को विनोदात्मक परिहास का विषय बना देते हैं। इसके लिए उन्होंने ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को आधार बनाया। पहले बुजुर्गों की सलाह जो लोक रूढ़ी है, इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। अनेक लोग संबंध लेकर आए जिनमें से बहुतों को निराला ने सविनय लौटा दिया, किंतु जो फिर भी अड़े रहे वह स्वयं निराला के मुख से यह सुनकर मैं हूँ मंगली भाग खड़े हुए। यह मंगली को अशुभ मानने की सामाजिक रूढ़ि पर विनोदात्मक टिप्पणी की गई है। प्रस्ताव लेकर एक सज्जन इसके बावजूद अड़ गए। निराला की सास को उन्होंने प्रभावित कर लिया। सास की शब्दावली मध्यवर्गीय संस्कार में पूरी तरह ढली हुई है। बोले मुझसे 26 की तो वर की है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर पटाने की यह प्रशंसात्मक युक्ति वह नहीं कर रहे ब्याह। आहा, हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन, हैं बड़े नाम उनके, डॉट 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 आएंगे कल। उसी दिन सासू जी अपनी सफलता के विश्वास के साथ नहा धोकर मुक्त केशनी उत्तम वस्त्र धारण एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अगले दिन के सकारात्मक निर्णय पर मुहर लगाने के लिए जब निराला के पास आती हैं तो निराला नितांत सहज और स्थिति निवेदन के भाव के साथ उनको वह कोना देखने के लिए संकेतित करते हैं जहां सरोज निराला की जन्म कुंडली के टुकड़े टुकड़े करके उन पर बैठी हुई थी, जिसे निराला ने स्वयं उसे कुछ देर पहले इसी प्रयोजन से खेलने के बहाने दिया था। सासू जी की रहस्य इसमत वयः प्राप्त मध्यवर्गीय नारियों का वैवाहिक संबंधों के प्रति एक सहज चाव और उनकी प्रगल्भ सांकेतिकता कि यहाँ वही परिणत होती है जो कमोबेश खजोहरा में आगे चलकर बुआ जी की हुई थी। यद्यपि इसे सौंदर्य प्रियता का एंटी क्लाइमेक्स नंद दुलारे वाजपेयी खजोहरा के संदर्भ में न कहकर परंपरागत भावना एक एंटी क्लाइमेक्स कहना अधिक सार्थक होगा। समग्रतः यह एक परिहासात्मक चित्रण है जो यथेष्ट विनोदात्मक भी है। विनोदात्मक परिहास का एक और रूप निम्नांकित पंक्तियों में देखा जा सकता है, जहाँ निराला वर के पिता के बिवाई से फटे तथा तेलपिए चमरौधे जूते को फाड़ कर बाहर निकले गंधाते पैरों का उल्लेख करते हैं और उन्हें पूजने में अपनी असमर्थता जताते हैं। वह जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उधार, पृष्ठ संख्या 100, खाए के मुँह ज्यों पिए तेल चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पुंजू ऐसी नहीं सकती। प्रस्तुत यह विषय तो परिहासजनक है ही, अब प्रस्तुत यह उपमान विधान भी उसी के अनुरूप है। यमुना के कछार की भांति बिवारी से कटे फटे पैर, आगे से फटा हुआ चमरौधा जूता उधार मांगने वाले मुख के समान सदैव खुला रहने वाला, अंतिम पंक्तियों में निराला किंचित गंभीर हो उठते हैं जब वह कहते हैं कि ऐसे चरणों को वह नाक दबाकर या गंध संवेदन रहित होकर तथा स्वाभिमान को तिलांजलि देकर नहीं पूछ सकेंगे। इससे पहले वह कह चुके हैं कि वह पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करने की बात सोचते हैं क्योंकि वही शोभन होगा। यद्यपि वह रूढ़ को तोड़ने से घबराते नहीं, किंतु मुख्य मुद्दा यह है कि वह परंपरा का पूरा भार ढोने में स्वयं को अक्षम पाते हैं। परिहास के ऊपरी संदर्भित प्रकरण की समाप्ति में निराला की वग्धता मुखर हो उठती है। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने को मुझको नहीं चाहा। यहाँ शिव शब्द का प्रयोग अत्यंत वितृष्णा की मना स्थिति में हुआ है और उसका अर्थ है अशिव, अमंगलकारी। परिहास प्रतीक ऐसे मना स्थिति के परिवर्तन के साथ प्रगल्भतापूर्ण व्यंग में परिणित हो जाती है। यह स्थल इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है जिसमें कहे गए शब्द का अर्थ वास्तविक अर्थ के ठीक विपरीत होता है। व्यंग्य में रचनाकार की मुद्रा आक्रामक होती है। इसमें प्रायः रचनाकार उन स्थितियों के प्रति असंतोष व्यक्त होता है जो समग्रतः उसके लिए नितांत असह्य हो जाती हैं। यों व्यंग्य के भी दो भेद किए जाते हैं, विनोदात्मक व्यंग्य और आक्रामक व्यंग्य। विनोदात्मक व्यंग्य मनोरंजक होते हैं और वह पत्र पत्रिकाओं में प्रायः ही छपते रहते हैं। आक्रामक व्यंग्य में अनुभव का तीखापन प्रमुख हो जाता है और वह प्रायः ही कटोक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है। साहित्य में कटोक्ति का होना गुण नहीं माना जाता, किंतु किन्हीं स्थितियों में वह अपरिहार्य भी हो जाती है। तभी तो अमर्ष को संचारी भाव में रखा गया और रौद्र तथा बीभत्स को रसों में। सरोज स्मृति में ऐसे दो स्थल, पहला साहित्य जगत से संबंधित, दूसरा वैवाहिक प्रथा से। निराला एक लंबे समय तक पुरानी कविता से जुड़े किंतु उनके समय में प्रतिष्ठित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि साहित्य आचार्यों की उपेक्षा के शिकार रहे और उन्हें अपने को स्थापित करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल पर एक तीखी व्यंग्यात्मक कविता हमारे कॉलेज का बचुआ भी लिखी थी। 1921 में लिखी उनकी धार शीर्षक कविता में नए युग की प्रगतिशील चेतना अथवा नई स्वच्छंद कविता की धारा को अवरुद्ध करने की चेष्टा करने वाले जिन कुंजर तथा भूधर आदि का उल्लेख है, वे उन पुरातनमुखी आचार्यों की ही ओर संकेत करते हैं जो नएपन का सदैव विरोध करते हैं। निराला के साहित्यिक संघर्ष का यह प्रतीकात्मक बिंब देखें। पृष्ठ संख्या 101, देखें वे हंसते हुए प्रवर जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब शत घात घूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल वह शरछेप वह रणकौशल। अंततः निराला के विरुद्ध दहाड़ने वालों के गले बैठ जाते हैं और निराला का आत्मविश्वास दृढ़तर होता है। बात प्रतीकात्मक रूप में कही गई है, अतः व्यंग्य की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। यह असंतोषजनित व्यंग्य तब कटुता के स्तर तक आ जाता है जब निराला की श्रेष्ठ कविताएं, मसलन जूही की कली, संपादकों के द्वारा लौटा दी जाती है। लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर, डॉट 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 गुन गुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। निराला उन संपादकों को असहृदय, निरानंद तथा उससे भी आगे बढ़कर उन्हें गर्दभ का विशेषण सांकेतिक रूप में देते हैं, क्योंकि वह साहित्य के मामले में घास चरने वालों से अधिक समझ नहीं रखते। कटोक्ति का वास्तविक रूप इन पंक्तियों में देखा जा सकता है, जहाँ निराला अपने स्वजातियों पर सीधी चोट करते हैं। एक कान्य कुब्ज, कुलकुला अंगार, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय बेल में विष ही फल, या दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। प्रकट है कि यहाँ निराला की सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। निराला अपने अंतिम समय तक सही अर्थों में प्रगतिशील रहे, जिसे उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ भी किया। सरोज स्मृति में भी निरर्थक रूढ़ियों के प्रति उन्होंने खुला विद्रोह किया है। ऐसे कवि का उद्यम आक्रोश भी सात्विक ही कहा जाएगा। अंधेरे में कविता में भी परिहास और व्यंग्य की स्थितियां विद्यमान हैं। वस्तुतः यह समूची कविता ही व्यवस्था के विद्रूप पर आधारित है। काव्य नायक के रूप में मुक्तिबोध स्वयं को उस निहत्थे आम आदमी का प्रतिरूप मानते हैं जो व्यवस्था के विरुद्ध तो है, किंतु उसके पृष्ठ संख्या 102 पास ना विद्रोह और प्रतिरोध के साधन है और ना ही साहस या आत्मबल। यहाँ आत्म परिहास की स्थिति बन जाती है जब काव्य नायक ब्रैकेट में नाटक में जैसे दर्शकों की ओर मुंह घुमाकर अपनी अक्षमता के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी करता है। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। यह एक विदुषकीय स्थिति है। बड़बोलेपन के साथ साहस ही निहायत घटिया आत्मविद्रूप का सामने आना एक आत्म परिहासात्मक स्थिति ही है, जो अन्य कविताओं में भी प्रायिक रूप से उभरती रही है। मसलन ये पंक्तियाँ देखें, नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, डॉट 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 कि मैं अपनी अधूरी बीड़ियाँ सुलगा, ख्याली सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचता हूँ निखरते चांद के तल पर, अचानक विकल होकर मुझी से लिपट जाती हैं चकमक की चिंगारियाँ। वस्तुतः ऐसी उक्तियों के मूल में मुक्तिबोध की आत्म करुणा है, जिसके सहारे वे एक नया विरोधाभासी काव्य स्थापित करना चाहते थे, किंतु वह पाठकीय दृष्टि से विनोदात्मक सामग्री के रूप में अधिक सार्थक सिद्ध होती है। अंधेरे में कविता में व्यंग्य की स्थितियां वहां लक्षित होती हैं जहां काव्य नायक को भयजनक बिंबों से थोड़ी मुक्ति मिलती है। संत्रास और उससे मुक्ति का यह क्रम रचना के अंत तक चलता रहता है। वस्तुतः यह समूची कविता ही हल्यूसिनेशन की कविता, त्रासद बिंब और त्राणद बिंब दोनों ही कवि के अंतर्मन की निर्मितियां हैं। संत्रास की स्थितियों में जब किसी तृणदाता का बिंब मनु रक्तालोक पुरुष, रहस्यमय व्यक्ति, फिरफिरा पागल, गांधी अजनबी आदि आदि उभर आता है, तो काव्य नायक में थोड़ी देर के लिए आत्मविश्वास लौटता है। ऐसे क्षणों में उन स्थितियों को लेकर व्यंग करने में सक्षम होता है जिन्होंने उसका सिर घुमा दिया है। एक बार फिर आत्म व्यंग्य, मेरा सिर गरम है इसलिए भरम है। उन बुद्धिजीवियों के चेहरे चरित्र पर एक तीखा व्यंग्य देखें जिनका व्यक्तिगत या पोशीदा रूप उनके प्रतिष्ठित सामाजिक रूप के ठीक विपरीत होता है। काव्य नायक जो कि प्रतीक है उस आम आदमी का, जो व्यवस्था और प्रशासन की मार सहते सहते विद्रोही हो उठा है, किंतु जिसके विद्रोह का उसके अकेलेपन, साधनहीनता तथा आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई अर्थ नहीं का पीछा समूची प्रशासनिक तथा सैन्य शक्ति कर रही है, और वह दम छोड़कर भाग रहा है कि गली में से वह प्रोसेशन की सैनिक साज सज्जा देखने लगता है। उसे धक्का सा लगता है जब वह सैन्य अधिकारियों के साथ सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों को भी उस जुलूस में शामिल देखता है। चेहरे वह मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। पृष्ठ संख्या 103, भई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण मंत्री भी उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। सेना नायक साहित्यिक राजनीतिक तथा उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ डोमाजी उस्ताद को जोड़ देना मुक्तिबोध की प्रखर व्यंग्यशीलता का परिचायक है। वह किसी को भी नहीं बख्शते, क्योंकि भीतर से वह सब एक जैसे हैं, घोर स्वार्थी और मानवीय मूल्यों का गला घोटने वाले नरपिशाच। वह इन सबको नगर की गहन मृतात्माओं के रूप में देखते हैं, जो रात में जुलूस में चलती हैं, दिन में कार्यालयों और घरों में रहती हैं। गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। व्यंग्य के ऐसे सशक्त स्थल और भी हैं। अंधेरे में कविता में व्यंग्य ने कटूक्ति का भी रूप लिया है। ये पंक्तियाँ किसी गाली से कम नहीं है। उधर अंबर बन अनात्म बन गए, डॉट डॉट किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, और यह पंक्ति भी, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गए देश, अरे जीवित रह गए तुम। कवि का सारा आक्रोश इस वाक्यांश में अत्यधिक धिक्कार का पर्याय बन जाता है, अरे जीवित रह गए तुम। सरोज स्मृति एक पारिवारिक जीवन से संबंधित कविता है, जिसमें कथा के विकास के साथ सामाजिक सरोकार जुड़ जाते हैं, इसलिए उसका परिहास और व्यंग्य सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। अंधेरे में कविता का चरित्र भिन्न है, उसके सरोकार आरंभ से अंत तक जनसंघर्ष से जुड़े रहे हैं। इस कारण मुक्तिबोध की व्यंग्यशीलता समूची व्यवस्था पर प्रहार करती है, और उसके बरक्स साधारण आदमी की दयनीयता तथा उसके आक्रोश को उभारती है। दोनों कविताओं के सापेक्षित मूल्यांकन के प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि सरोज स्मृति में व्यंग्य एवं परिहास के माध्यम से जिन समस्याओं को उठाया गया था, जिन पर प्रहार किया गया है, वह ठोस हैं और पाठक को एक दिशा देने वाली हैं। अंधेरे में यह ठोसपन नहीं है, क्योंकि उसमें स्थूल कथा आधार न होकर अवचेतन के सत्याभास और मिथ्याभास हैं। वह निश्चित रूप से विद्रोह की चेतना जगाती है, किंतु उस विद्रोह का लक्ष्य कौन है, क्या है, यह शायद मुक्तिबोध भी नहीं जानते थे।